नमस्कार भारत, आज है 7 फरवरी दिन बुधवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। ताइवान में जोरदार भूकंप, लोगों ने सड़क पर रात गुजारी। नेपाल में आज राष्ट्रीय सभा का चुनाव।
ये बहुत ही अहम चुनाव है। राष्ट्रीय सभा के चुनाव न होने की वजह से अभी नेपाल में नए सरकार का गठन नहीं हुआ है।
हिंसा के बाद कासगंज में अमन की कोशिशें।
जिसने हमारे शहर की आबो हवा खराब की है उसका कोई धर्म ईमान नहीं।
और सुनिए,
लड़कियों का सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल में रहना चाहिए, इसको अगर रहने देंगे तो लड़की बहक जाएगी, ये मेन वजह है।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। ताइवान के पूर्वी छोर पर बसे शहर हुआलिन में बीती रात 6.4 तीव्रता का भूकंप आया है। इस भूकंप में अभी तक कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप की वजह से एक 10 मंजिला होटल आंशिक रूप से धराशायी हो गया है, जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में गिनी की खाड़ी से लापता हुए तेल के टैंकर का पता लग गया है। इस टैंकर में 22 भारतीय नागरिक सवार थे। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी कि सभी 22 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सुषमा स्वराज ने अपने ट्वीट में नाइजीरिया और बेनिन की सरकारों को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए धन्यवाद भी दिया है। तेल का टैंकर बीते गुरुवार को गिनी की खाड़ी से लापता हो गया था। अमरीका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से बुधवार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम फैल्कन हैवी है और इसे अमरीकी व्यवसायी इलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। मौजूदा वक्त में बाकी रॉकेट अपने साथ जितना भार ले जा सकते हैं, फैल्कन हैवी उससे 2 गुना भार ले जाने की क्षमता रखता है। यह रॉकेट लंदन में चलने वाली 5 डबल डेकर बसों के बराबर भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। पहली उड़ान के खतरों को देखते हुए इस रॉकेट के साथ इलोन मस्क की पुरानी लाल रंग की टेस्ला स्पोर्ट्स कार को रखा गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पूर्व कमांडर लैरी शियाओ ने कहा,
Well, this was a very exciting day. This is the first new rocket to be launched as of today.
यह बहुत ही खुशी का दिन है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट को उसके पहले ही लॉन्च में सफलतापूर्वक आसमान में उड़ते देखना सच में बहुत रोमांचक है। मौजूदा समय में जितने भी रॉकेट हैं उनके मुकाबले इसकी क्षमता 2 गुनी है। हमें इतने शक्तिशाली रॉकेट की आवश्यकता थी ताकि जरूरी भार को धरती की कक्षा से सफलतापूर्वक भारत बाहर भेजा जा सके। ये थे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के पूर्व कमांडर लैरी शियाओ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सोमवार को रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करने के बाद अमरीकी शेयर बाजार में मंगलवार को उछाल देखने को मिला। डाउ जोन्स 2% की वृद्धि के साथ बंद हुआ, लेकिन लंदन के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। लंदन का शेयर बाजार 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पहले पूर्वी एशिया के बाजारों में भी रिकॉर्ड 5% की गिरावट दर्ज की गई। कई विश्लेषकों का मानना है कि दुनिया भर के बाजारों में दर्ज की जा रही गिरावट की वजह अमरीकी शेयर बाजार में बढ़ रही ब्याज दरों का डर है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि बिजली की कमी ने गजा को एक मानव निर्मित आपदा की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपने एक वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि गजा में जरूरी सुविधाएं जैसे अस्पताल और सीवेज प्लांट में बिजली मुहैया कराने के लिए महज 10 दिन का ईंधन ही बचा है। गजा में दुर्रा अस्पताल के निदेशक माजिद हमदा ने कहा, ताज़ा हालातों की वजह से कई बार हमें 2 मरीजों को एक ही बेड पर लेटाना पड़ता है। हमने अपनी सेवाओं में कमी की है, लेकिन हम इन्हें पूरी तरह बंद नहीं कर सकते। हमने कई विभागों को आपस में मिला लिया है। ऑक्सीजन यूनिट बंद हो चुकी है। अस्पताल में सिर्फ 40% सेवाएं ही काम कर रही हैं। ये थे गजा में एक अस्पताल के निदेशक के शब्द। दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त हो रही खबरों के अनुसार राष्ट्रपति जैकब जुमा अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हो सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे जैकब जुमा की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता सिरिल रैमपोशा के साथ बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात काफ़ी उपयोगी रही। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद बीबीसी संवाददाता ने बताया कि ऐसा लग रहा है जुमा मान और प्रतिष्ठा के बाद अपना पद छोड़ सकते हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत संदीप सोनी के साथ। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच बसे ताइवान से। ताइवान में बीती रात जोरदार भूकंप आया है जिसकी वजह से कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। रात बीत गई है, उजाला हो गया है, खबरें आएंगी, पता चलेगा, हताहतों की सही संख्या पता चलेगी। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं नवीन नेगी।
ताइवान में मंगलवार देर रात आए 6.4 तीव्रता के भूकंप ने देश के पूर्वी तट को झकझोर दिया। भूकंप का सबसे ज्यादा असर पूर्वी छोर पर बसे हुआलिन शहर में देखने को मिला। यहां इस भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ताइवान के अधिकारियों के मुताबिक भूकंप की वजह से अभी तक कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह भूकंप स्थानीय समय अनुसार रात 11:50 पर आया। सोशल मीडिया पर आ रही तस्वीरों में सड़कों और ऊंची इमारतों में काफी नुकसान होते हुए दिखाया जा रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार 10 मंजिला मार्शल होटल आंशिक रूप से धराशायी हो गया है। इस होटल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी जीना स्टारबक ने बीबीसी को बताया, मैं इस होटल के पास ही बने एक हॉस्टल में रहती हूँ। जिस वक्त भूकंप आया हम सभी अपने बेड पर थे। अचानक हमारा बेड हिलने लगा और फिर सभी चीजें हिलने लगी, चारों ओर शोर मचने लगा। तभी हमारे हॉस्टल के कर्मचारी ने हमें बाहर निकलने के लिए कहा। हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें नीचे गिरने लगी। जब हम सड़क पर पहुंचे तो देखा कि होटल एक तरफ से झुक गया है। ये थे एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। हुआलिन शहर के दमकल विभाग के अनुसार होटल से 28 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इतने ही और लोगों के अभी होटल की इमारत में फंसे होने की आशंका है। होटल एक तरफ से झुक गया है। इमारत में फंसे लोग अपने मोबाइल की लाइट चमकाकर खुद के फंसे होने की सूचना दे रहे हैं। इसके साथ ही आपातकालीन कर्मचारियों की मदद के लिए सेना को भी बुला लिया गया है। भूकंप की वजह से हाईवे और पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। 2 साल पहले फरवरी महीने में ही ताइवान में इतने ही तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें 117 लोगों की मौत हो गई थी। ताइवान की भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरह है कि वहां 2 भूगर्भीय प्लेटें आपस में मिलती हैं। इसकी वजह से भूकंप नियमित रूप से आते रहते हैं।
ताइवान में भूकंप की वजह से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि और 100 से ज्यादा लोग घायल। अब बात नेपाल की, जहाँ आज संसद के ऊपरी सदन राष्ट्रीय सभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव के बाद नेपाल में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। राष्ट्रीय सभा के चुनाव के बारे में और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी वात्सल्य राय ने काठमांडू में बीबीसी नेपाली सेवा के साथी निरंजन राजवंशी से बात की।
ये बहुत ही अहम चुनाव है क्योंकि अपर हाउस यानी कि राष्ट्रीय सभा के चुनाव न होने की वजह से अभी नेपाल में नए सरकार का गठन नहीं हुआ है। 1.5 महीने पहले ही लोअर हाउस यानी कि प्रतिनिधि सभा का चुनाव का नतीजा आ चुका था, लेकिन गवर्नमेंट और निर्वाचन आयोग ने इसलिए ये रोक दिया, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया क्योंकि राष्ट्रीय सभा का चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए नई सरकार गठन की प्रक्रिया के लिए आज का ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है।
निरंजन, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऊपरी सदन जिसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, इसका चुनाव होता किस तरह है?
नेपाल में 7 प्रोविंस है जो प्रदेश सभा कहते हैं हम। राष्ट्रीय सभा में कुल 59 सीट होगा जो 7 प्रोविंस है। 1 प्रोविंस से 8 सदस्य जीत कर आएंगे। 56 सदस्य का चुनाव ये प्रोविंस से होगा और जो 3 बाकी है वो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऐसे 59 का टोटल ये बड़ी बन जाएगा राष्ट्रीय सभा का। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 3 दिन के अंदर सब रिजल्ट अनाउंस होगा।
जब ये रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद सरकार गठन में कितना वक्त लगेगा? नई सरकार कब तक नेपाल में अस्तित्व में आ जाएगी?
नतीजा आ जाने के बाद लोअर हाउस का रिजल्ट ऑफिशियली निर्वाचन आयोग अनाउंस करेगा और उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाके निर्वाचन आयोग रिजल्ट देंगे, फिर 1 हफ्ते के अंदर नई सरकार गठन के लिए राष्ट्रपति अनाउंस करेगा और नई सरकार गठन हो जाएगा।
प्रतिनिधि सभा के चुनाव काफी पहले हो चुके हैं, सरकार गठन का इंतजार है, नई सरकार की सूरत लगभग तय मानी जा रही है जहां वाम मोर्चा को बहुमत मिला है, तो सरकार न बन पाने से क्या नेपाल में कोई दिक्कत देख पा रहे हैं?
दिक्कत ये है कि अभी जो 2 महीने से जो नई सरकार नहीं बन पाया है, इससे ये आम लोग में थोड़ा सा निराश हो चुका है कि 2-2 महीने तक रिजल्ट क्यों अनाउंस नहीं हुआ। और दूसरी, जो नेपाली कांग्रेस जो अभी सरकार में है वो लगातार एक से एक नई नई डिसीजन दे रहा है कैबिनेट से, तो उससे भी बहुत दिक्कतें बढ़ रही है। तो ये जो बीच का माहौल है, इससे थोड़ा पॉलिटिकल अनबन जो प्रतिपक्षी और गवर्नमेंट के बीच थोड़ा मनमुटाव शुरू हो चुका है यहाँ पे।
नेपाल में आज राष्ट्रीय सभा का चुनाव, जानकारी दे रहे थे काठमांडू से निरंजन राजवंशी। भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में पाकिस्तानी कैदी को भगाने के दौरान चरमपंथियों की गोलियों से दो पुलिसकर्मी मारे गए हैं। श्रीनगर में हमारे सहयोगी माजिद जहांगीर उनमें से एक पुलिसकर्मी बाबर के घर पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा सुना बता रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में।
बाबर अहमद के गांव ब्रारी आंगन में दाखिल होते ही यहां लोगों की बारी बीट बाबर के जनाजे का इंतजार सड़क के दोनों किनारे कर रही थी। बाबर के एक मंजिला मकान में दाखिल होने पर घर के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। बाबर की पत्नी शकीला रोते बलकते कह रही थी, शकीला ने अपने पति को आखिरी बार बीती इतवार को देखा था।
मैंने उसको देखा इस इतवार के दिन, कुछ मुझे कहने, मेरे साथ इतना प्यार करता था कि कोई बात नहीं है कहने की, मैं क्या कहूँ इस वक्त, क्या कहूँ, मुझे इतना प्यार, मैं अपना माँ बाप की उसके पीछे छोड़ा था। रोज 24 घंटे मुझे फोन करता, मुझे कहने लगा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आई नहीं आऊंगा मैं घर, कल मैं घर आऊंगा, अगर बच्ची के साथ बातें कराओ। फिर इस बच्ची के साथ बातें की, फिर उसका 10 बजे से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं कहती हूँ अगर उनको अल्लाह तआला ऐसे जिससे उनको उसको मारा है उसको गोली लगाई है, उनको भी ऐसे ही लगाना।
बाबर की दो बेटियां हैं, एक 3 साल की और दूसरी 1 साल की। अपनी मां को रोते देख दोनों ही बच्चियां चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। बाबर के सबसे बड़े भाई मंजूर अहमद कहते हैं कि ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था कि भाई की लाश इस तरह घर आएगी। बाबर के एक रिश्तेदार अब्दुल रशीद कहते हैं,
देखिए यहाँ पे जो मसला है, इस मसले के अंदर जब तक बातचीत नहीं की जाती है तब से हम मुसलमान यहाँ वहाँ से दोनों तरफ से मरते जाएंगे। यहाँ मरता है तो मुसलमान मरता है, वहाँ मरता है मुसलमान मरता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा पुलिस में, एक घर का अगर 10 बंदे हैं 10 में से एक तो पुलिस में है।
गांव में ऐसे भी कुछ लोग थे जो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते थे। बीते वर्षों में कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस के दर्जनों जवान चरमपंथी हमलों में मारे जा चुके हैं। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी के दिन शुरू हुई हिंसा की आग भले ही अब बुझ गई है, लेकिन इस आग में झुलसे लोगों के जख्म भरने में अभी काफी समय लगेगा। हिंसा के पीड़ित इंसाफ की मांग के साथ अब दो समुदायों के बीच बनी अविश्वास की खाई भी पाटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कासगंज से BBC संवाददाता रजनीश कुमार की जमीनी रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के कासगंज में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में विवाद के दौरान चंदन गुप्ता नाम के एक युवक की हत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। 10 दिन बाद भी शहर में पुलिस की चौकसी जारी है। शहर में हर कोने और चौराहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। चंदन गुप्ता हत्या मामले में पुलिस ने 18 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। शहर के जिस बड्डू नगर मुस्लिम इलाके में तिरंगा यात्रा को लेकर विवाद हुआ था, वहां ऊपर से सब कुछ तो सामान्य दिखता है लेकिन एक किस्म की उदासी और गुस्सा भी है। लोगों को लगता है कि अब तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया। तिरंगा यात्रा में विवाद के दौरान मोहल्ले के ही नौशाद नाम के एक व्यक्ति के जांघ में गोली लगी थी। नौशाद अलीगढ़ से इलाज करा वापस घर आ गए हैं। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता कि किसने गोली मारी। नौशाद का कहना है कि उनमें और चंदन में फर्क बस इतना है कि उसे सीने में गोली लगी और उन्हें संयोग से जांघ में।
जिन्होंने मेरे मारी है और चंदन भाई को भी मारा है, मेरा भाई है वो भी मारने वाला, उन्हें अच्छी तरह सजा दी जाए, पूरी जांच करी जाए इस केस की। लेकिन अभी इससे पहले कोई कार्रवाई मत कीजिए, जो लोग बेगुनाह हैं, कसूरवार हैं, जो भी हैं, आप लोग उन्हें अभी छोड़ दीजिए। जो गुनहगार हैं बाद में भी आप पकड़ सकते हैं, बाद में भी हाजिर हो सकते हैं वो लोग। मैं ये चाहता हूँ सरकार से।
नौशाद अपने जांग का जख्म दिखा रहे थे तो वहीं बैठे मेहराज खान कहते हैं,
सर जिसने हमारे शहर की आबो हवा खराब की है, मैं हिंदू भाई से ही है वो मुस्लिम भाई से ही, उसका कोई धर्म ईमान नहीं। मैं अल्लाह से यही गुजारिश करता हूँ, अल्लाह उसको नाबीना अंधा कर दे, जिसने हमारे देश के सुकून को खत्म किया, हमारे भाईचारे को सुकून। हम तो एक दूसरे से बहुत मिलजुल कर रहते थे, हमारे यहाँ पर तो बहुत सुकून था।
नौशाद के बुजुर्ग पिता भी कांपती आवाज से कह उठते हैं, मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। ओम प्रकाश इसी इलाके में पिछले 25 सालों से मूंगफली बेच रहे हैं। वो कहते हैं,
उसमें तो यह है दिक्कत, बहुत परेशानी आई, गरीब आदमी को बहुत दिक्कत हुई है। हम जैसे भाई मोमचे वाले, इन लोगों को बहुत दिक्कत आई है खाने पीने के लिए।
चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता को लगता है कि उनके बेटे की हत्या किसी सुनियोजित योजना का हिस्सा है। उनका कहना है कि जिस तरह से मारा गया उससे शक पैदा होता है। वो कहते हैं कि चंदन तो हर साल तिरंगा यात्रा में जाता था, इसी बार ऐसा क्यों हुआ? चंदन की हत्या कर दी गई और नौशाद अपने जख्म के साथ बिस्तर पर हैं। इन दोनों के अलावा दोनों समुदायों के बीच अविश्वास का जो जख्म पैदा हुआ है उसे भरना भी कम जरूरी नहीं है। रजनीश कुमार, BBC, कासगंज।
अमरीकी शेयर बाजार में भूचाल के बाद कल भारतीय शेयर बाजार ने भी गोता लगाया। मेरे सहयोगी वात्सल्य राय ने अर्थशास्त्री आकाश जिंदल से बात करके शेयर बाजार के मौजूदा हाल को समझने और भविष्य की संभावनाओं को टटोलने की कोशिश की है।
पहले दिन जिस दिन सेंसेक्स नीचे गया था उस दिन ग्लोबल रीजंस भी थे और इंडियन बजट भी था, दोनों ही फैक्टर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। बजट में हम सब जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ कोर्स कुछ कंडीशनलिटीज के साथ और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पे एक कैटेगरी में टैक्स, तो दो चीजों ने थोड़ा सेंटीमेंट को डाउन किया। उसके बाद डे टू और डे थ्री अमेरिकन मार्केट्स में जो कुछ हो रहा है, ग्लोबल मार्केट्स में जो कुछ हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट को डाउन किया है। अमेरिका में ये एप्रिहेंशन है कि इन्फ्लेशन बढ़ने की काफी पॉसिबिलिटी है, जो दूसरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से बॉन्ड मार्केट में बहुत मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट बहुत डाउन है। डाउ जोन्स जो वहां का मेन इंडेक्स है कल बहुत बुरी तरह से धराशायी हुआ है, तो उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्केट, जैपनीज मार्केट और अल्टीमेटली इंडियन मार्केट, आज दुनिया की सारी मार्केट्स जो हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। अमेरिका में अगर कुछ इतना मेजर होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया पे उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें हम FIIs कहते हैं, वो वही हैं जो US में भी इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सेंटिमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है।
ये स्थिति कब तक बनी रहेगी या बाजार में कुछ सुधार नजर आएगा?
इंडियन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने की हमें पॉसिबिलिटी लगती है, चाहे इंटरनेशनल एजेंसीज हो, चाहे हमारी अपनी एजेंसीज और गवर्नमेंट एजेंसीज। हमारे यहाँ 7-7.5% की GDP ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। और इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट रहेगा। मार्केट्स का नेचर ही वॉलेटाइल होता है, तो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हम देख रहे हैं, बट अगेन लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन इकोनॉमी में मुझे काफी दम लगता है। और बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले हमारा GDP ग्रोथ क्योंकि काफी अच्छा है, कोई भी अगर इन्वेस्ट करता है उसे लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलना चाहिए, एक दिन या दो दिन या इंट्राडे के इन्वेस्टमेंट को ना देखे, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस देखे। जब बाजार गिरता है तो एक एंट्री का पॉइंट तो होता है, अब कई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री करते हैं तो वो इस उम्मीद में होते हैं कि बाजार गिरा है तो उस समय एंट्री कर लें, जितना नीचे एंटर करेंगे उतना अच्छी बात है। सट्टे और जुए वाली मेंटेलिटी से हर एक को बचना चाहिए।
शेयर बाजार की सेहत पर ये थे अर्थशास्त्री आकाश जिंदल। और मुझे लगता है कि दिल्ली से छपने वाले तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर शेयर बाजार में गिरावट की खबर बहुत अच्छे से छपी होगी। नवीन ने कि क्या कह रहे हैं आज दिल्ली के अखबार?
जी संदीप जी, आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है। आज दिल्ली से छपने वाले सभी समाचार पत्रों में शेयर बाजार में गिरावट की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर 5 कॉलम की खबर छापी है और उसमें उसने लिखा है कि वैश्विक बाजार में जो डामाडोल की स्थिति पैदा हो गई है उस वजह से भारतीय बाजार में कल एक दिन में 2.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान,
जबकि कुछ दिन पहले तक वो आसमान छू रहा था।
जी बिल्कुल। अखबार आगे लिखता है कि दुनिया भर के बाजारों में मंगलवार को भारी गिरावट देखने को मिली और इसका असर भारतीय बाजारों में भी दिखा। सेंसेक्स एक वक्त में कल 1275 अंक नीचे गिर गया था, लेकिन उसके बाद हालांकि भारतीय बाजार
संभल गया थोड़ा,
जी थोड़ा संभल गया, लेकिन इस गिरावट की वजह से 2.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान कल उठाना पड़ा।
शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के मन में डर भी बैठ गया है।
जी डर बैठ गया है कि अमरीकी शेयर बाजारों में जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ सकती हैं, इसका डर बना हुआ है। दूसरी खबरों की तरफ बढ़ें तो इंडियन एक्सप्रेस ने ही अपने फ्रंट पेज पर एंकर स्टोरी छापी है और वह है खेलो इंडिया से जुड़ी हुई। अखबार लिखता है कि 31 जनवरी को खेल मंत्रालय ने अपनी महत्वाकांक्षी खेल योजना जिसका नाम खेलो इंडिया है इसकी शुरुआत की थी, और इसका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों को खेलों की तरफ आकर्षित किया जाए, लेकिन ये जो योजना है इतनी अधिक कामयाब होती नज़र आ नहीं रही है।
इसकी वजह
उन्होंने एक इवेंट है फ्री स्टाइल कुश्ती का, 42 किलोग्राम का इवेंट, उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है जिसमें महज 3 प्रतिभागी हिस्सा लेने के लिए आए।
तो तय बात है कि उन तीनों को ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार मिल गया होगा।
जी, और वो तीनों ही जो है पुरस्कार अपने मेडल जीत करके चले गए। और सिर्फ एक ही इवेंट का ये हाल नहीं है, कई सारे इवेंट्स का ये हाल है जहाँ बहुत कम प्रतिभागी हिस्सा लेने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर जो हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर छापी है, वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की है, जहाँ एक झोला छाप डॉक्टर के सस्ते इलाज के चलते कम से कम 38 लोग एचआईवी के संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं।
कहाँ की खबर है ये
उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की खबर है। और डॉक्टर जो है सिर्फ 10 रुपये में इलाज करता था, इस सस्ते इलाज के चक्कर में लोग उसके पास जाते थे। राजेंद्र यादव डॉक्टर का नाम बताया गया है,
कानपुर के पास उन्नाव जिला।
जी, और 10 रुपये में इलाज करवाने के चलते 38 लोगों को जो है एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पर खबर छापी है, दिल्ली से जो 5 साल का बच्चा 25 जनवरी को जिसका अपहरण हो गया था उसे सकुशल वापस पुलिस ने
बड़े नाटकीय तरीके से
वापस पुलिस ने अपने पास कब्जे में ले लिया है। और कल शूटआउट में पुलिस ने जो है अपनी एक योजना के तहत अपहरणकर्ताओं से इस बच्चे को छुड़ाने में कामयाबी पाई। इस शूटआउट में 28 साल के अपहरणकर्ता नितिन शर्मा को हिरासत में लिया गया, उनके साथ ही रवि की जो है मौत हो गई है इस गोलीबारी।
बहुत शुक्रिया नवीन। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में आज भी छोटी छोटी बच्चियों का खतना किया जाता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने समुदाय में प्रचलित इस कुप्रथा के खिलाफ पुरजोर आवाज उठा रहे हैं? सुनिए बीबीसी संवाददाता सिंधु वासिनी त्रिपाठी की ये रिपोर्ट।
सोचिए कि 6-7 साल की छोटी सी बच्ची को चॉकलेट दिलाने या घुमाने ले जाने के बहाने एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है और वहाँ एक अनजान शख्स चाकू, ब्लेड या रेजर से उसके जननांग का एक हिस्सा काट देता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में बोहरा मुस्लिम समुदाय की लाखों बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। बोहरा समाज में लड़कियों का खतना किया जाता है और वो भी बहुत छोटी उम्र में। हैरानी वाली बात यह है कि भारत में इसे अपराध नहीं माना जाता। बोहरा मुस्लिम परिवार से आने वाली मासूमा रानालवी को भी इस दर्दनाक अनुभव से दो चार होना पड़ा था, लेकिन आज वो इसके खिलाफ खुलकर आवाज उठा रही हैं।
जब एक लड़की 6-7 साल की है, उसके जेनिटल्स का एक हिस्सा काटा जाता है, जहाँ पर लड़कियों को सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो एक स्पॉट है, इसका जो हुड होता है इसके ऊपर का, हमारी कम्युनिटी में काटा जाता है और इस प्रथा को खव्स कहते हैं।
और खतना के समर्थन में तर्क क्या दिए जाते हैं?
एक तो कहते हैं कि इससे आप प्योरिटी हो जाएगी, आप इससे हाइजीन होती है, लेकिन इसकी जो मेन वजह है जिसकी वजह से ये किया जाता है वो ये है कि लड़कियों का सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल में रहना चाहिए, इसको अगर रहने देंगे तो लड़की बहक जाएगी। ये मेन वजह है फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की इंडिया में, बोरा कम्युनिटी में और दुनिया भर जहां पर भी ये प्रथा आज भी चल रही है।
मासूमा बताती हैं कि खतना झेलने वाली औरतों की जिंदगी किस कदर बदल जाती है।
फिजिकल पेन और टॉर्चर तो बहुत ज्यादा होता ही है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है उम्र भर रहता है लड़कियों के साथ। और ये लड़कियां जब बड़ी होती है, शादीशुदा होती है, तब इनकी सेक्सुअल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है।
मौजूदा वक्त में कई सामाजिक कार्यकर्ता और संस्थाएं भारत सरकार से इस पर रोक लगाने की अपील कर रही हैं। मासूमा उम्मीद करती हैं कि सरकार लाखों बोहरा मुस्लिम औरतों का दर्द समझेगी और इस क्रूर प्रथा पर रोक लगाएगी। सिंधु वासिनी, बीबीसी दिल्ली।
और अब एक ऐसा विषय जिस पर भारत में बीते कुछ समय से काफी चर्चा हो रही है, हम बात कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की, जिस पर अभी सहमति नहीं बनी है लेकिन इस विचार पर विमर्श लगातार जारी है। इस बारे में बीबीसी पंजाबी सेवा के हमारे सहयोगी अरविंद छाबड़ा ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से बात की है।
देखिए, इन प्रिंसिपल तो बहुत अच्छा आइडिया है, बड़े फायदे हैं, पर ये ऐसा इशू है कि जिसपे पॉलिटिकल कंसेंसस का होना बहुत जरूरी है कि सारी पार्टी इस पे एग्री करें। कंसेंसस की कोशिश की जा रही है, विच इज ए गुड थिंग, जो अच्छी बात है।
क्या आपको लगता है कि इस पे कंसेंसस हो सकता है? बाकी सभी पार्टीज जो है इसी तरह की उनकी भी सोच है?
ज्यादातर पार्टियों की सोच तो इसी तरह है, कुछ पार्टियां की जरूर मुखालफत कर रही है, तो इसीलिए कंसेंसस की कोशिश जरूरी होती है। पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने भी कहा कि खर्चे जितने होते हैं, अब बार बार इलेक्शन होते हैं तो बार बार खूब खर्चा हो रहा है, इसी तरह जो नॉर्मल वर्किंग ऑफ ऑफिसेज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्शन के जमाने में झगड़े फसाद बहुत होने लगते हैं, पोलराइजेशन करने के लिए कोशिश होती है, तो ज्यादा इलेक्शन का मतलब ज्यादा झगड़े फसाद। इसलिए एक साथ इलेक्शन हो जाए तो वंस इन फाइव ईयर्स, पांच साल तक तो कम से कम सुकून रहेगा। दूसरी तरफ जो आर्ग्यूमेंट है वो भी अच्छी खासी मजबूत है कि भाई गरीब आदमी को तो बार बार चुनाव अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पास एक ही पावर है तो उसको यूज करने का मौका मिलता है, वरना नेता लोग एमपी एमएलए एक बार वोट लेके चले जाते हैं, पांच साल तक कोई शक्ल नहीं दिखाते, तो वो शिकायत दूर हो जाएगी कि भाई बार बार जब आना पड़ेगा इलेक्शन के लिए वोट मांगने, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और सेकेंडली, नेशनल इश्यूज, लोकल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज बड़े डिफरेंट होते हैं, तीनों इलेक्शन के लिए इश्यूज अलग है। अब इश्यूज ही मिक्सअप हो जाए, पंचायत के इलेक्शन के लिए तो उसने नाली मोरी स्कूल बनाने की बात करनी है, इधर यहाँ देश की फाइनेंशियल पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज होते हैं, इस वजह से वोटर कंफ्यूज हो सकता है। उस लिहाज से अलग अलग होने का जो चलता आ रहा है उसमें फायदे हैं। तीसरे, जिस वजह से ये अलग अलग होने लगे, ओरिजिनली तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक साथ ही प्लान किए थे।
अब तो काफी बातचीत हो रही है इस बारे में, क्या आप जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, क्या ये इसके बारे में पहले भी कभी चर्चा हुई इसको लेकर कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए?
देखिए, हमारे वक्त तक तो ये चर्चा नहीं रही, लेकिन हालांकि जिक्र बीच बीच में आता था। 2010 में तो आडवाणी जी ने आवाज उठाई थी, उससे पहले 1999 में लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया था। बीच बीच में रिकमेंडेशन वगैरह या सुझाव आते रहे, लेकिन कोई इस पे इलेक्शन कमीशन में सुझाव वगैरह मांगे नहीं गए। इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी चीज है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है पंचायत के इलेक्शन, उसका समाधान निकाला जा सकता है। वोटर एक ही बार जाएगा, एक वोट देने के बजाय तीन वोट दे देगा, तो उस लिहाज से इलेक्शन मैनेजमेंट का खर्चा बहुत कम होगा।
भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के विचार पर उसके गुण दोष पर ये थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। तीन टेस्ट मैच, छह वनडे और तीन T20 मैचेस खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, और एक बार फिर से टीम इंडिया वहां है जहां से इस दौरे की शुरुआत हुई, लेकिन तब से अब तक में काफी कुछ बदल गया है। तब केप टाउन के पहले टेस्ट में टीम इंडिया को करारी हार मिली थी, और अब विराट कोहली की नजरें यहां 3-0 की अजेय बढ़त पर लगी हुई है। आज के मैच को लेकर के क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा कहते हैं,
जी लेकिन इस बार थोड़ा समा कुछ अलग है, खिलाड़ी कुछ अलग खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की टीम तो अब कहूँ मैं कि आधी की भी क्या पोनी सी रह गई है, क्योंकि चोटिल हो गए हैं 2-3 उनके महत्वपूर्ण खिलाड़ी।
भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे न्यूलैंड्स केप टाउन में इस मैच को देखा जा सकता है। क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा,
देखिए ये बात तय है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। पहले एबी डिविलियर्स इंजर्ड हो गए, फिर सैम डु प्लेसी और अब क्विंटन डीकॉक, तो ये ना गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई है। यहाँ पर टिके रहना, मुकाबले जीतना आसान नहीं है, और ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें भारतीय टीम अच्छा करती है। तो ये पहला मौका है साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को लगातार 3 वनडे हराने का,
तो इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका को हरा करके विराट कोहली एक नया इतिहास रचें। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट अमेरिका में लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट दिखने में कैसा है और इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहें तो आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, चलते चलते खास खास खबरें नवीन नेगी से।
ताइवान के पूर्वी छोर पर बसे शहर हुआलिन में बीती रात 6.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप में अभी तक कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीका के देश बेनिन में गिनी की खाड़ी से लापता हुए तेल के टैंकर का पता लग गया है। इस टैंकर में 22 भारतीय नागरिक सवार थे। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार को ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी दी कि सभी 22 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से बुधवार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस रॉकेट का नाम फैल्कन हैवी है और इसे अमरीकी व्यवसायी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। सोमवार को रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करने के बाद अमरीकी शेयर बाजार में मंगलवार को उछाल देखने को मिला। डाउ जोन्स 2% की वृद्धि के साथ बंद हुआ, लेकिन लंदन के शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। लंदन का शेयर बाजार 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे पूर्व एशियाई बाजारों में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। अगला प्रसारण दिनभर समय जानते हैं आप, शाम 7:30 बजे। तब तक bbchindi.com आपके साथ है। संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत।